एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिनके विचार आज भी हमें कहीं ना कहीं झकझोड़ते हैं, सोरेन कीर्केगार्ड। और हमारा गाइड है पैट्रिक गार्डनर की किताब जिसका नाम भी सीधा साधा है, कीर्केगार्ड।
बिल्कुल, कीर्केगार्ड 19वीं सदी के डेनिश विचारक, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने फिलॉसफी को, मतलब दर्शन को, अकेडमिक बहसों से बाहर निकाला और जिंदगी के जो असल सवाल है ना, जैसे प्यार, डर, विश्वास, अकेलापन, उनके बीच ला खड़ा किया।
हाँ?
गार्डनर की ये किताब हमें समझाती है कि क्यों कीर्केगार्ड आज भी इतने जरूरी हैं, खासकर इस दौर में जब हम सब अपनी जिंदगी में, मतलब, ढूंढ रहे हैं अपनी पहचान, वो सब।
सही कहा, ऐसा लगता है जैसे कीर्केगार्ड ने 100-150 साल पहले ही आज के इंसान की उलझनों को समझ लिया था। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि गार्डनर के नजरिए से कीर्केगार्ड के इन गहरे और कभी कभी मुश्किल लगने वाले विचारों को थोड़ा आसान बनाए और देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं।
हाँ, कोशिश करते हैं। चलिए तो पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिन्होंने कीर्केगार्ड को समझने में हमारी मदद की है, पैट्रिक गार्डनर। गार्डनर 1922-1997 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन के एक जाने माने प्रोफेसर थे, और उनकी खासियत थी 19वीं सदी का यूरोपीय दर्शन, खासकर वो विचारक जो व्यक्ति के अनुभव पर जोर देते थे, जैसे शोपेनहावर, नीत्शे और जाहिर है कीर्केगार्ड।
हाँ, और गार्डनर की खूबी ये थी कि वो अंग्रेजी दुनिया की जो विश्लेषणात्मक सोच है, मतलब चीजों को बारीकी से परखने का नजरिया, और यूरोपीय दर्शन की गहरी अस्तित्व से जुड़ी बातें, उन दोनों को एक साथ ला पाते थे।
सही, वो सिर्फ ये नहीं बताते कीर्केगार्ड ने क्या कहा, बल्कि ये भी समझाते हैं कि उस समय के माहौल में, खासकर हेगल जैसे दार्शनिकों के दबदबे के बीच, कीर्केगार्ड के विचार इतने रेडिकल क्यों थे। हेगल का जो सिस्टम था, जो कहता था कि सब कुछ तर्क से समझा जा सकता है, कीर्केगार्ड ठीक उसके उलट व्यक्ति के निजी अनुभव पर जोर दे रहे थे।
और उनकी बात में वजन इसलिए भी था, जैसा आपने कहा, कि वो सिर्फ अनुवादों पर निर्भर नहीं थे, उन्हें भाषा आती थी।
बिल्कुल, उन्हें डेनिश भाषा आती थी, उन्होंने कीर्केगार्ड को मूल में पढ़ा था। वो उस जमाने के डेनमार्क के माहौल को, वहां के धार्मिक और बौद्धिक झगड़ों को अच्छे से समझते थे। तो वो कीर्केगार्ड के जो अक्सर विरोधाभासी से लगते हैं ना विचार, उनको बहुत साफ तरीके से पेश कर पाते हैं। एक तरह से उन्होंने कीर्केगार्ड जैसे मुश्किल विचारों को आम पाठक के लिए खोला।
अच्छा, तो अब सीधे किताब पर आते हैं, गार्डनर की कीर्केगार्ड। ये किताब असल में है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ जीवनी है या फिलॉसफी का विश्लेषण?
ये दोनों का एक बहुत अच्छा मेल है। गार्डनर सिर्फ कीर्केगार्ड के विचारों की लिस्ट नहीं बनाते, वो उनके जीवन की घटनाओं को, जैसे उनका वो थोड़ा उदास बचपन, पिता का असर, उनकी टूटी हुई सगाई, चर्च से उनके झगड़े, इन सब को उनके दर्शन से जोड़ते हैं।
अच्छा,
वो दिखाते हैं कि कैसे कीर्केगार्ड के विचार हवा में नहीं जन्मे, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के संघर्षों और सवालों से निकले हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो कीर्केगार्ड को पहली बार समझ रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी गहराई है कि जो पहले से जानते हैं उन्हें भी नई बातें मिलेंगी।
तो किताब का मूल आइडिया क्या है? गार्डनर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कीर्केगार्ड के बारे में?
गार्डनर का मुख्य तर्क ये है कि कीर्केगार्ड ने दर्शन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने फोकस बड़े बड़े सिस्टम और अमूर्त विचारों से हटाकर व्यक्ति के अपने अनुभव पर ला दिया। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या है, बल्कि ये कि मैं इस दुनिया में कैसे जीऊं, है ना?
हाँ,
कैसे अपने डर, अपनी उम्मीदों, अपनी पसंदों के साथ एक सार्थक जीवन बनाऊं। गार्डनर दिखाते हैं कि कीर्केगार्ड का असली सवाल था एक ऐसी दुनिया में ईमानदारी से कैसे जिया जाए जहां पुराने सारे सहारे टूट रहे हैं, जहां ईश्वर पर या समाज पर आंख मूंदकर भरोसा करना मुश्किल हो गया है।
ये तो आज भी बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगता है। तो किताब हमें किस सफर पर ले जाती है? क्या स्ट्रक्चर है इसका?
किताब की शुरुआत होती है 19वीं सदी के डेनमार्क से। उस समय का माहौल कैसा था, हेगल के विचारों का क्या असर था, धर्म को लेकर लोगों के मन में कैसे सवाल उठ रहे थे, वो सब। फिर गार्डनर हमें कीर्केगार्ड की निजी जिंदगी और उनके विचारों के विकास के साथ साथ लेकर चलते हैं। वो उनके मशहूर विचारों, जैसे जीवन के तीन चरण, है ना, सौंदर्यवादी, नैतिक, धार्मिक,
हाँ, सुनाए इनके बारे में।
हाँ, फिर चिंता, एंग्जाइटी, विश्वास की छलांग, इन सबको एक एक करके खोलते हैं। और एक बहुत जरूरी बात गार्डनर समझाते हैं कि कीर्केगार्ड ने अलग अलग नामों से क्यों लिखा, वो जो सूडोनिम्स इस्तेमाल करते थे।
हाँ, वो क्यों?
और उनके लिखने की शैली उनके दर्शन का हिस्सा कैसे है। वो पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में गार्डनर बताते हैं कि कीर्केगार्ड का बाद के विचारकों पर, खासकर अस्तित्ववादियों पर, कितना गहरा असर पड़ा।
सुनने में तो काफी गहरा विश्लेषण लग रहा है। चलिए कुछ खास हिस्सों पर और बात करते हैं। आपने हेगल का जिक्र किया, गार्डनर कैसे दिखाते हैं कि कीर्केगार्ड हेगल से अलग थे? क्या झगड़ा था उनका?
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गार्डनर बताते हैं कि कीर्केगार्ड की हेगल से चिढ़ सिर्फ अकादमिक नहीं थी, वो थोड़ी पर्सनल भी थी। हेगल का मानना था कि इतिहास और समाज एक तर्कसंगत दिशा में बढ़ रहे हैं और व्यक्ति उसी बड़ी मशीन का एक पुर्जा है।
एक सिस्टम का हिस्सा।
हाँ, कीर्केगार्ड को लगता था कि ये सब बातें व्यक्ति के असल दुख दर्द, उसके डर, उसकी पसंद की आजादी, इन सबको नजरअंदाज करती हैं।
क्या
क्या किसी सिस्टम से ये समझा जा सकता है कि प्यार में दिल टूटने पर कैसा लगता है या मौत का डर क्या होता है?
हाँ,
कीर्केगार्ड के लिए ये सवाल ज्यादा जरूरी थे।
बिल्कुल।
इसी तरह उस समय डेनमार्क में चर्च का जो औपचारिक रूप था, कीर्केगार्ड उसकी भी आलोचना करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सच्चा विश्वास सिर्फ रीति रिवाजों से नहीं आता।
तो उनके अपने जीवन के अनुभव उनके दर्शन में कैसे झलकते हैं? गार्डनर इस बारे में क्या कहते हैं?
गार्डनर इस पर काफी जोर देते हैं। कीर्केगार्ड का बचपन, जैसा मैंने कहा, बहुत खुशगवार नहीं था। उनके पिता बहुत धार्मिक थे पर उदास भी रहते थे, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। फिर उनकी सगाई रेगिन ओल्सन से हुई, जिसे उन्होंने खुद तोड़ दिया, और ये घटना उनके लेखन में बार बार लौट कर आती है, खासकर पसंद और जिम्मेदारी के सवालों के रूप में।
अच्छा।
बर्लिन में उन्होंने शेलिंग के लेक्चर सुने, जो हेगेल के विरोधी थे। गार्डनर दिखाते हैं कि ये सब अनुभव, दुख, अपराध बोध, प्यार, शक, यही वो कच्चा माल थे जिनसे कीर्केगार्ड ने अपने दर्शन को गढ़ा। उनका मूल मंत्र था, सत्य कोई बाहरी चीज नहीं जिसे किताबों में ढूंढा जाए, सत्य वो है जिसे आप जीते हैं, जिसके प्रति आप प्रतिबद्ध होते हैं। सत्य व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ।
ये सत्य व्यक्तिपरक है वाला आइडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब क्या इसका मतलब है कि जो मेरा मन करे वही सच है? गार्डनर इसे कैसे समझाते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गार्डनर साफ करते हैं कि कीर्केगार्ड का मतलब ये नहीं था कि 2+2=5 भी सच हो सकता है अगर आप चाहें तो। उनका मतलब था कि जब बात जीवन के बड़े सवालों की आती है, जैसे ईश्वर में विश्वास करना है या नहीं, किस रास्ते पर चलना है, किसे प्यार करना है, तो इनका जवाब किसी लैब टेस्ट या तार्किक फॉर्मूले से नहीं मिल सकता।
सही।
इनका सच आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी लगन, आपकी अपनी प्रतिबद्धता में छिपा है। आप उस सच को जीते हैं, सिर्फ जानते नहीं।
और इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे उपदेश देने के बजाय अलग अलग किरदारों और नजरियों से लिखा।
हाँ, वो उनकी अप्रत्यक्ष संचार यानी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वाली शैली। गार्डनर इस बारे में क्या खास बताते हैं, क्यों इस्तेमाल की कीर्केगार्ड ने ये अजीब सी तकनीक?
गार्डनर बताते हैं कि ये सिर्फ स्टाइल का मामला नहीं था, ये उनकी फिलॉसफी की जरूरत थी, एक तरह से मजबूरी थी। कीर्केगार्ड मानते थे कि जिंदगी के सबसे गहरे सच सीधे नहीं बताए जा सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि प्यार सबसे जरूरी है, तो ये सिर्फ एक खोखला वाक्य होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक किरदार दिखाऊं जो प्यार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो शायद आप उस सच को महसूस कर पाएंगी, उस पर सोच पाएंगी।
हाँ, बात तो है। कीर्केगार्ड के अलग अलग छद्म नाम, जैसे जोहान्स द साइलेंटियो या विजिलियस हॉफिनियंसिस, वो अलग अलग जीवन दृष्टियों को पेश करते हैं। वो पाठक को उलझाते हैं, उसे चुनौती देते हैं कि वो खुद सोचे और अपना रास्ता चुने। वो जवाब नहीं देते, सवाल खड़े करते हैं।
बहुत दिलचस्प। अब उन तीन चरणों पर आते हैं, स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिनकी बात अक्सर कीर्केगार्ड के संदर्भ में होती है। गार्डनर इन्हें कैसे पेश करते हैं? पहला चरण, सौंदर्यवादी।
सौंदर्यवादी चरण गार्डनर के मुताबिक वो जीवन है जो बस मजे, रोमांच और नई नई चीजों के पीछे भागता है। बोरियत से बचना इसका सबसे बड़ा मकसद है।
अच्छा।
सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, एक शौक से दूसरे शौक में कूदता रहता है, बस इसलिए कि कुछ नया मिलता रहे। कीर्केगार्ड की किताब आइदर और का पहला हिस्सा इसी जीवन को दिखाता है।
लेकिन गार्डनर बताते हैं कि कीर्केगार्ड के अनुसार ये रास्ता आखिर में खालीपन और गहरी उदासी, मतलब डिस्पेयर की तरफ ले जाता है।
क्यों? मजे में क्या बुराई है? बुराई मजे में नहीं, बुराई है लगातार भागते रहने में, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कभी किसी चीज से गहराई से जुड़ते ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, और बिना जुड़ाव के, बिना कमिटमेंट के जीवन खाली लगता है।
तो इस खालीपन से निकलने का रास्ता क्या है? दूसरा चरण, नैतिक।
हाँ, नैतिक चरण। गार्डनर इसे आइदर और के दूसरे हिस्से के किरदार जज विलियम के जरिए समझाते हैं। ये वो जीवन है जहां व्यक्ति मजे के बजाय कर्तव्य, जिम्मेदारी और सामाजिक नियमों को चुनता है। शादी करना, अपना काम ईमानदारी से करना, समाज का अच्छा सदस्य बनना, ये सब नैतिक जीवन के हिस्से हैं। यहां व्यक्ति अपनी पहचान अपनी भूमिकाओं में पाता है, पति, पत्नी, नागरिक, पेशेवर, और उसमें एक तरह का संतोष भी मिलता है। ये सौंदर्यवादी जीवन के बिखराव के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ लगता है।
लेकिन क्या ये काफी है? किर्केगार्ड यहीं रुक जाते हैं, क्या ये आइडियल स्टेज है?
नहीं, गार्डनर स्पष्ट करते हैं कि किर्केगार्ड के लिए नैतिक चरण भी मंजिल नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। नैतिक जीवन आपको नियम तो बता सकता है, लेकिन जब आप उन नियमों को तोड़ते हैं, जो कि हम सब कभी ना कभी करते हैं, तो ये आपको अपराध बोध, गिल्ट और अपनी कमियों के एहसास से नहीं उबार सकता।
अच्छा,
ये पाप की जो गहरी सच्चाई है उसका सामना नहीं कर पाता। यहीं पर तीसरे चरण धार्मिक रिलीजियस की जरूरत पड़ती है।
और धार्मिक चरण तक पहुंचने के लिए वो विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है ना, लीप ऑफ फेथ। गार्डनर इसे कैसे समझाते हैं, खासकर वो इब्राहिम वाले उदाहरण से?
बिल्कुल, गार्डनर इब्राहिम और इसाक की कहानी के किर्केगार्ड के विश्लेषण को बहुत महत्व देते हैं। कहानी बताइए कि ईश्वर ने इब्राहिम से उसके इकलौते बेटे इसाक की बलि मांगी।
हाँ, बहुत मुश्किल कहानी है।
नैतिक नजरिए से देखें तो यह भयानक है, एक पिता अपने बेटे को कैसे मार सकता है। लेकिन किर्केगार्ड कहते हैं कि इब्राहिम विश्वास का योद्धा है, क्योंकि वो नैतिक नियमों से ऊपर उठकर ईश्वर के साथ अपने सीधे व्यक्तिगत संबंध को चुनता है। ये विश्वास की छलांग तर्क और सबूतों से परे जाने का फैसला है। ये मानना कि कुछ सच है भले ही उसे साबित न किया जा सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पूरी शिद्दत से उसे चुना है। गार्डनर ये भी जोर देते हैं कि किर्केगार्ड के लिए ये सच्चा व्यक्तिगत विश्वास उस संगठित धर्म से बहुत अलग था जिसे वो ईसाई जगत कहते थे, जो अक्सर खोखला और सामाजिक दिखावा बन जाता है।
ये विश्वास की छलांग वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, एक और चीज जो किर्केगार्ड के बारे में बहुत सुनी जाती है वो है चिंता, एंग्जाइटी या ड्रेड। गार्डनर इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये वही टेंशन है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में होती है?
नहीं, गार्डनर बताते हैं कि किर्केगार्ड की चिंता, जिसे कभी कभी ड्रेड या डेनिश में एंग्स्ट कहते हैं, वो सामान्य घबराहट से थोड़ी अलग और गहरी है। ये हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम से जुड़ी हुई है। ये वो एहसास है जो हमें तब होता है जब हमें पता चलता है कि हम कुछ भी चुनने के लिए आज़ाद हैं, कि हमारा भविष्य तय नहीं है और हमारे चुनाव ही हमें बनाएंगे।
अरे बाप रे।
हाँ, ये आज़ादी का चक्कर है, डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। जैसे आप किसी ऊंची जगह के किनारे पर खड़े हों और नीचे देखें तो सिर घूम जाए, क्या आप कूद भी सकते हैं? ये संभावनाओं का अथाह सागर देखकर सिर घूम जाना।
तो ये बुरी चीज नहीं है?
किर्केगार्ड के हिसाब से नहीं, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है। इसी तरह गार्डनर के अनुसार किर्केगार्ड पाप को सिर्फ नियम तोड़ना नहीं मानते, बल्कि अपनी सच्ची संभावनाओं से, अपने प्रामाणिक स्व, ऑथेंटिक सेल्फ से दूर हो जाना मानते हैं।
तो ये सारे विचार, व्यक्ति परकता, चुनाव, चिंता, विश्वास, गार्डनर के मुताबिक किर्केगार्ड की विरासत क्या है, उनका असर कहाँ तक दिखता है आज?
गार्डनर दिखाते हैं कि किर्केगार्ड का असर बहुत गहरा और दूर तक फैला हुआ है। 20वीं सदी के बड़े दार्शनिक जैसे मार्टिन हाइडेगर और ज़ियां पॉल सार्ट्र, वो सीधे तौर पर उनसे प्रभावित थे। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म का पूरा आंदोलन ही किर्केगार्ड की नींव पर खड़ा है, ऐसा कह सकते हैं।
अच्छा,
लेकिन असर सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है। गार्डनर का मानना है कि प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, चिंता, व्यक्तिपरक सत्य जैसे मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा।
बिल्कुल, तो अगर हम गार्डनर के विश्लेषण से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालना चाहें तो वो क्या होंगी, कुछ खास बातें जो याद रह जाएं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी थीम है, व्यक्ति परकता ही सत्य है, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ। जैसा हमने पहले बात की, इसका मतलब ये नहीं कि तथ्य मायने नहीं रखते, बल्कि ये कि जीवन के अर्थ और उद्देश्य जैसे सवालों का जवाब सिर्फ बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, उसे अपने अंदर, अपनी पसंद और अपनी प्रतिबद्धता में खोजना होगा।
हाँ, और दूसरी थीम जो मुझे बहुत दमदार लगती है वो है व्यवस्था के विरुद्ध व्यक्ति, चाहे वो हेगल का तार्किक सिस्टम हो या चर्च की औपचारिकता हो या समाज का दबाव। किर्केगार्ड हमेशा व्यक्ति की अनूठी आवाज और जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। आज के दौर में जहां ट्रेंड और भीड़ का इतना असर है, ये याद दिलाना जरूरी है कि आपकी अपनी सोच मायने रखती है।
सही बात। तीसरी थीम है, चिंता आजादी का एहसास है, एंग्जाइटी रिवील्स फ्रीडम। गार्डनर दिखाते हैं कि किर्केगार्ड चिंता को एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखते, जैसे बस खत्म करना है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास चुनने की ताकत है और यही ताकत हमें इंसान बनाती है। ये थोड़ी डरावनी बात है पर गहरी भी है।
चौथी, विश्वास का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ फेथ। गार्डनर हमें समझाते हैं कि सच्चा विश्वास तर्क की सीमाओं से परे जाता है। वो इब्राहिम की तरह मुश्किल, यहां तक कि बेतुका लग सकता है, लेकिन वो एक गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता से आता है। ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात है जो धर्म या अध्यात्मता को सिर्फ नियमों या रिवाजों तक सीमित कर देते हैं।
बिल्कुल। और पांचवी थीम जो आज शायद सबसे ज्यादा गूंजती है वो है प्रामाणिकता बनाम सामाजिक दबाव, ऑथेंटिसिटी वर्सेस सोशल कन्फॉर्मिटी। गार्डनर के मुताबिक किर्केगार्ड का पूरा जोर इसी पर था कि हम कैसे समाज की उम्मीदों और दिखावे के बीच अपना असली चेहरा, अपनी सच्ची आवाज बचाए रखें।
सोशल मीडिया के जमाने में तो ये चुनौती और भी बड़ी हो गई है ना, हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश में है।
वही तो, किर्केगार्ड शायद कहते कि ये सब सौंदर्यवादी स्टेज का ही एक रूप है।
सच में ये थीम सोचने पर मजबूर करती हैं। गार्डनर ने किर्केगार्ड के कुछ खास कोट्स या विचारों पर भी रोशनी डाली होंगी, कोई ऐसी बातें जो दिमाग में अटक जाती हैं?
हाँ बिल्कुल, जैसे वही बात सत्य व्यक्ति पर रखता है। गार्डनर बार बार जोर देते हैं कि ये आलसी सोच नहीं है, बल्कि ये मांग है कि हम जिंदगी के जरूरी सवालों में खुद को झोंक दें। सिर्फ जानकारी जमा करना काफी नहीं, जीना पड़ता है,
और वो भी व्यक्ति सार्वभौमिक से ऊंचा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। मतलब क्या समाज के नियम या नैतिकता मायने नहीं रखते? गार्डनर इसे कैसे समझाते हैं?
गार्डनर बताते हैं कि किर्केगार्ड नैतिकता को खारिज नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि कभी कभी व्यक्ति का ईश्वर के साथ या अपने गहरे विश्वास के साथ एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो सामान्य नैतिक नियमों से ऊपर चला जाता है। इब्राहिम का उदाहरण यही दिखाता है। ये खतरनाक विचार भी लग सकता है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नैतिकता का असली आधार क्या है, नियम या व्यक्तिगत विवेक।
एक और कोट जो मुझे हमेशा याद रहता है, चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है, डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। गार्डनर इसे कैसे खोलते हैं?
गार्डनर इसे ऐसे समझाते हैं कि ये चक्कर आना इस बात का सबूत है कि आप एक किनारे पर खड़े हैं जहां से आप कहीं भी कूद सकते हैं। आपके पास असीम संभावनाएं हैं और यही एहसास चिंता पैदा करता है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी आजादी की कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है।
और ये वाला तो जिंदगी का फलसफा लगता है। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे जीना चाहिए।
हाँ, गार्डनर बताते हैं कि ये किर्केगार्ड का तरीका है ये कहने का कि हम कभी भी पूरी तरह समझकर फैसले नहीं ले सकते। जिंदगी हमेशा अनिश्चित रहेगी, हमें वर्तमान में जीना है, चुनाव करने हैं, आगे बढ़ना है, भले ही हमें सब कुछ पता ना हो। बाद में शायद हमें समझ आए कि हमने वो क्यों किया, लेकिन जीने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता।
सही बात है। और आखिर में विश्वास की छलांग, गार्डनर के विश्लेषण से इसका सार क्या निकलता है?
सार ये है कि विश्वास सबूतों के खत्म होने के बाद शुरू होता है। ये एक फैसला है, एक जुनून भरा समर्पण है, एक पैशनेट कमिटमेंट। आप छलांग लगाते हैं क्योंकि आप उस चीज को अपने जीवन का केंद्र बनाना चुनते हैं, भले ही आपके पास कोई गारंटी ना हो। ये तर्क से परे का मामला है।
ये सारे विचार हमें हमारी रोजमर्रा की सोच से वाकई हिला देते हैं ना?
बिल्कुल।
तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। गार्डनर के जरिए समझे गए किर्केगार्ड के ये विचार हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं? क्या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है?
हाँ, मुझे लगता है बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो निर्णय लेने में, जब हम करियर चुनते हैं या कोई बड़ा रिश्ता बनाते हैं तो हम अक्सर फायदे नुकसान देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। किर्केगार्ड गार्डियर के मुताबिक हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने अंदर की आवाज, अपने मूल्यों को भी सुनना चाहिए। क्या ये रास्ता मुझे मेरे असली मैं के करीब ले जाएगा? अनिश्चितता तो रहेगी, पर क्या मैं इस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह कमिटेड हूँ?
हाँ, और वो सौंदर्यवादी चरण की आलोचना मुझे लगता है ये आज के उपभोक्तावाद और सोशल मीडिया के दौर पर एकदम फिट बैठती है।
हाँ।
हमेशा अगली नई चीज, अगला अनुभव, अगला लाइक। गार्डनर का विश्लेषण हमें दिखाता है कि किर्केगार्ड शायद कह रहे होते कि इस भागदौड़ से बचो, कहीं टिको, किसी चीज या रिश्ते के प्रति गहराई से जुड़ो, वहीं असली मतलब मिलेगा।
बिल्कुल, और रिश्तों को समझने में भी मदद मिलती है। गार्डनर दिखाते हैं कि किर्केगार्ड के मुताबिक सच्चे रिश्ते सिर्फ शुरुआती आकर्षण, मतलब वो एस्थेटिक स्टेज से आगे बढ़कर आपसी सम्मान और जिम्मेदारी यानी नैतिक चरण तक जाते हैं। और शायद लंबे गहरे रिश्तों में वो विश्वास की छलांग भी शामिल होती है,
ये जानते हुए भी कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, आप उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने का फैसला करते हैं, एक तरह का कमिटमेंट।
चिंता को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। गार्डनर हमें समझाते हैं कि हर चिंता बुरी नहीं होती। कुछ चिंताएं हमें जगाती हैं, हमें बताती हैं कि जिंदगी में कुछ जरूरी दांव पर लगा है। उन्हें दबाने या उनसे भागने के बजाय शायद हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो हमें हमारी आज़ादी और जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखा रही हैं।
सही कहा। और आखिर में भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत। गार्डनी के किर्केगार्ड हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम सामाजिक दबाव में बह ना जाएं, अपने सच पर टिके रहें भले ही वो आसान ना हो। इसका मतलब अड़ियल होना नहीं बल्कि प्रामाणिक होना है, ऑथेंटिक होना है, अपने मूल्यों को जानना और उनके हिसाब से जीना।
तो कुल मिलाकर गार्डनर की किताब से गुजरने के बाद किर्केगार्ड से क्या बड़ी सीख मिलती है, आपके लिए क्या टेक अवे है?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें अनिश्चितता को गले लगाना होगा। हाँ, डर लगेगा, शक होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने मूल्यों, अपने रिश्तों, अपने विश्वासों के प्रति जुनून के साथ प्रतिबद्ध होना होगा। सुरक्षा के झूठे वादों के पीछे भागने के बजाय हमें वो चुनाव करने होंगे जो हमें हमारे असली स्वरूप के करीब लाते हैं, भले ही वो मुश्किल हो।
और मेरे लिए एक और ज़रूरी बात यह है कि ये जो व्यक्ति परखता और व्यक्तिगत चुनाव की बात है, इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। गार्डनर दिखाते हैं कि किर्केगार्ड के लिए जब आप दिल से कोई चुनाव करते हैं तो वो ज़्यादा सच्ची प्रतिबद्धता होती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ समाज के डर से कुछ कर रहे हों। और ये शायद ज़्यादा गहरे सामाजिक जुड़ाव की तरफ ले जा सकता है। और हाँ, चिंता को समझने का उनका नज़रिया ये आज भी बहुत ताज़ा और मददगार लगता है।
सही कहा। पैट्रिक गार्डनर की ये किताब हमें दिखाती है कि किर्केगार्ड कोई बीते ज़माने के म्यूज़ियम में रखने वाले दार्शनिक नहीं हैं। उनके सवाल हमारे सवाल हैं, उनकी उलझने हमारी उलझने। वो हमें याद दिलाते हैं कि सोचना और जीना अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।